अध्ययन लेख 51। इस लेख का अध्ययन 15 से 21 फरवरी के दौरान किया जाएगा। विषय, यहोवा उन्हें बचाता है जो निराश है। ये लेख भजन 34 के 18 और उसके फुटनोट पर आधारित है, जहां लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के करीब रहता है, वो उन्हें बचाता है जो निराश है। गीत 30। यहोवा मेरा परमेश्वर, पिता और दोस्त। लेख की एक झलक, यूसुफ, नवोमी, रूत, एक लेवी और प्रेषित पत्रस कुछ मुश्किल हालत से गुजरे थे और वो उस वक्त बहुत निराश हो गए थे। इस लेख में हम सीखेंगे कि यहोवा ने कैसे उन्हें दिलासा दिया और उनकी हिम्मत बंधाई। हम ये भी सीखेंगे कि जब हम पर मुश्किलें आती हैं तो हम उनकी तरह क्या कर सकते हैं और जिस तरह परमेश्वर ने उनकी मदद की वो हमारी मदद कैसे करेगा। पैराग्राफ 1 और 2। सवाल, इस लेख में हम क्या चर्चा करेंगे? हम सब कभी कभी बहुत निराश हो जाते हैं। इस छोटी सी जिंदगी में हमें कई दुख झेलने पड़ते हैं। देखा जाए तो हमारी जिंदगी दुखों से भरी होती है। पुराने जमाने में भी यहोवा के कई सेवक निराश हो जाते थे। कुछ तो इतने निराश हो गए थे कि वो मर जाना चाहते थे, लेकिन जब भी वो निराश हुए, यहोवा ने उनकी हिम्मत बंधाई और उनके दुखी मन को दिलासा दिया। उन्हें अपने परमेश्वर पर भरोसा था और परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने उनके बारे में बाइबल में लिखवाया ताकि हम उनसे सीखें और हमें भी दिलासा मिले। इस लेख में हम यहोवा के कुछ ऐसे सेवकों के बारे में चर्चा करेंगे जो मुश्किल हालात से गुजरे थे और एक वक्त पर निराश हो गए थे। हम याकूब के बेटे यूसुफ के बारे में, विधवा नाओमी और उसके बहू रूत के बारे में, उस लेवी के बारे में जिसने भजन 73 लिखा था, और प्रेषित पत्रस के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि यहोवा ने कैसे उनकी हिम्मत बंधाई और उनके वाक्य से हम क्या सीख सकते हैं। इससे हमें भरोसा होगा कि यहोवा टूटे मन वालों के करीब रहता है, वो उन्हें बचाता है जो निराश हैं। भजन 34 का 18 और फुटनोट, यूसुफ ने अन्याय सहा। पैराग्राफ 3 और 4। सवाल, यूसुफ ने छोटी उम्र में क्या क्या मुश्किलें झेली? जब यूसुफ करीब 17 साल का था तो उसने दो सपने देखे। इसके पीछे यहोवा का हाथ था। इन सपनों का यह मतलब था कि यूसुफ एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और उसके परिवार के सब लोग उसका बहुत आदर सम्मान करेंगे। मगर इससे कुछ समय बाद उसके साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। उसका आदर करना तो दूर, उसके भाइयों ने उसे गुलामी में बेच दिया। उसे मिस्र ले जाया गया और वहां पुतिफर नाम के अधिकारी के यहां बेच दिया गया। देखते ही देखते यूसुफ की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। कल तक जो अपने पिता का चहेता बेटा था, अब मिस्र में गुलाम बनकर रह गया, जहां उसे पूछने वाला कोई नहीं था। इसके बाद यूसुफ की मुश्किलें और बढ़ गई। पुतिफर की पत्नी ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने उसका बलात्कार करने की कोशिश की। पुतिफर ने जानने की कोशिश भी नहीं की कि इल्जाम सही है या गलत। सीधे उसे जेल में डाल दिया और लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया। इतनी छोटी उम्र में यूसुफ पर बलात्कार करने का इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया। सोचिए, यूसुफ को कैसा लगा होगा। जब लोगों ने यह खबर सुनी तो उन्होंने यहोवा के बारे में बुरा भला कहा होगा। इससे यूसुफ का दुख और बढ़ गया होगा। यूसुफ जरूर निराश हो गया होगा। पैराग्राफ 5। सवाल, यूसुफ ने क्या किया जिस वजह से उसने हिम्मत नहीं हारी? जब यूसुफ पतिफर के यहां गुलाम था और बाद में जेल में था, तो वह अपनी समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सकता था, क्योंकि यह उसके बस में नहीं था। तब उसने क्या किया? उसके बस में जो नहीं था उसी के बारे में सोचते रहने के बजाय जो उसके बस में था वो करता रहा। उसे जो काम सौंपा गया था उसे वो लगन से करता रहा। और सबसे खास बात, उसने हमेशा वही किया जो यहोवा की नज़र में सही है। यही वजह है कि उसने हिम्मत नहीं हारी और यहोवा ने भी उसके हर काम पर आशीष दी। पैराग्राफ 6। सवाल, यूसुफ को अपने सपने याद करने से क्यों दिलासा मिला होगा? यूसुफ को एक और बात से हिम्मत मिली होगी। उसने उन सपनों के बारे में गहराई से सोचा होगा जो उसने बहुत पहले देखे थे। उसे एहसास हुआ होगा कि वो एक बार फिर अपने परिवार से मिल पाएगा और उसकी तकलीफें दूर हो जाएंगी। बाद में ऐसा ही हुआ। जब यूसुफ करीब 37 साल का था तो उसके सपने लाजवाब तरीके से सच होने लगे। पैराग्राफ 7। सवाल, पहला पत्रस 5:10 के मुताबिक हम क्यों अपनी मुश्किलें सह पाते हैं? हम क्या सीखते हैं? यूसुफ की कहानी से पता चलता है कि यह दुनिया बहुत बेरहम है और हमें लोगों के हाथों अन्याय सहना पड़ सकता है। यह भी हो सकता है कि कोई मसीह भाई या बहन हमारे साथ अन्याय करें। ऐसे में अगर हम यहोवा पर भरोसा रखेंगे और उसे अपना मजबूत चट्टान और गढ़ मानेंगे तो हम हिम्मत नहीं हारेंगे और उसकी सेवा करना नहीं छोड़ेंगे। पहला पत्रस 5:10 में लिखा है, मगर ये दुख तुम्हें कुछ ही समय के लिए झेलना होगा, इसके बाद परमेश्वर जो हर तरह की महाकृपा करता है वो तुम्हारा प्रशिक्षण खत्म करेगा। उसने तुम्हें सदा कायम रहने वाली महिमा पाने के लिए बुलाया है, क्योंकि तुम मसीह के साथ एकता में हो। वो तुम्हें मजबूत करेगा, शक्तिशाली बनाएगा और मजबूती से खड़ा करेगा। यूसुफ के वाक्य से हम ये भी सीखते हैं कि यहोवा को अपने जवान सेवकों पर बहुत भरोसा है। याद कीजिए कि जब यहोवा ने यूसुफ को वो सपने दिखाए तब वो शायद सिर्फ 17 साल का रहा होगा। आज भी कई जवानों को यूसुफ की तरह यहोवा पर मजबूत विश्वास है। उन्होंने यहोवा की आज्ञा तोड़ने से इनकार कर दिया, इसलिए उनके साथ अन्याय किया गया और कुछ को तो जेल की सजा भी दी गई। नवोमी और रूथ का दुख बर्दाश्त से बाहर था। पैराग्राफ 8। सवाल, नवोमी और रूथ के साथ क्या हुआ? एक बार जब यहूदा के इलाके में भयंकर अकाल पड़ा तो नवोमी और उसका परिवार वहां से मोआब देश चले गए और वहां परदेशियों की जिंदगी जीने लगे। मोआब में उसके पति एलिमेलेक की मौत हो गई। उसके बाद वो और उसके दो बेटे रह गए। कुछ समय बाद उसके दोनों बेटों ने रूथ और ओरपा नाम की दो मोआबी लड़कियों से शादी की। करीब 10 साल बाद नवोमी के बेटों की भी मौत हो गई और उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। तब वो तीनों औरतें कितनी दुखी हो गई होंगी। रूथ और ओरपा तो दोबारा शादी कर सकती थी, मगर बुजुर्ग नवोमी का क्या होता? कौन उसकी देखभाल करता? वो बिल्कुल टूट चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो बेतलहम लौट जाएगी। उसके साथ रूथ भी चले गई। नवोमी इतनी निराश थी कि उसने कहा, मुझे नवोमी नहीं मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के होते मेरी जिंदगी दुखों से भर गई है। रूथ 1:18-20। पैराग्राफ 9। सवाल, रूथ 1:16, 17 और 22 के मुताबिक रूथ ने नवोमी की कैसे हिम्मत बंधाई? नवोमी कैसे अपने दुख से उभर पाई? यहोवा ने और दूसरे लोगों ने उसकी मदद की और उसका साथ नहीं छोड़ा। मिसाल के लिए, रूथ ने उसे अकेला नहीं छोड़ा, वो उसके साथ साथ रही। रूथ 1:16 और 17 में लिखा है, लेकिन रूथ ने कहा, मुझे वापस जाने के लिए मत कह, अपने साथ आने से मत रोक, क्योंकि जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी, और जहां तू रात गुजारेगी वहीं मैं भी रात गुजारूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और दफनाई जाऊंगी। सिर्फ मौत ही मुझे तुझसे अलग कर सकती है। अगर किसी और वजह से मैं तुझसे अलग हुई तो यहोवा मुझे कड़ी से कड़ी सजा दे। और आयत 22 में लिखा है, इस तरह नवोमी मोआब के इलाके से अपनी मोआबी बहू रूथ के साथ वापस बेतलहम लौट आई। उस वक्त बेतलहम में जौ की कटाई शुरू हो गई थी। रूथ बेतलहम में बहुत मेहनत करती थी। वो नवोमी के लिए और अपने लिए जौ की बाले बिनकर लाती थी, इससे लोग देख पाए कि वो नेक और मेहनती है। पैराग्राफ 10। सवाल, यहोवा ने नवोमी और रूथ जैसे जरूरतमंद लोगों का कैसा ख्याल रखा? यहोवा ने भी नवोमी और रूथ का साथ नहीं छोड़ा। उसने उनके जैसे जरूरतमंद लोगों के लिए कानून बनाया था ताकि उनका भला हो। वो कानून ये था कि जब इस्राएली अपनी फसल की कटाई करेंगे तो वो खेत के किनारे की बाले छोड़ दें ताकि गरीब आकर उन्हें बीनकर ले जाएं। इस इंतजाम की वजह से नवोमी और रूथ को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। पैराग्राफ 11 और 12। सवाल, बोवस ने नवोमी और रूथ के लिए क्या किया? रूथ एक अमीर इस्राएली बोवस के खेत में बाले बिनती थी। बोवस ने देखा कि रूथ अपनी सास नवोमी से कितना प्यार करती है और उसकी कितनी देखभाल करती है। रूथ का यह अटल प्यार उसके दिल को छू गया। इसलिए बोवस ने उनके परिवार की विरासत की जमीन छुड़ाने के लिए उसे खरीद ली और रूथ से शादी कर ली। बोवस और रूथ का एक बेटा हुआ जिसका नाम ओबेद रखा गया। ओबेद के खानदान में ही राजा दाविद पैदा हुआ। दाविद उसका पोता था। कल्पना कीजिए कि जब नवोमी ने नन्हे ओबेद को अपनी गोद में लिया तो उसे कितनी खुशी हुई होगी और उसने यहोवा का कितना धन्यवाद किया होगा। नई दुनिया में जब नवोमी और रूथ जिंदा होंगी तो उन्हें और भी खुशियां मिलेंगी। वो ये जानकर फूली नहीं समाएंगी कि ओबेद के खानदान से ही वादा किया गया मसीहा यानी यीशु पैदा हुआ। पैराग्राफ 13। सवाल, नवोमी और रूत के वाक्य से हम क्या सीखते हैं? हम क्या सीखते हैं? जब हम पर मुश्किलें आती हैं तो हम भी शायद निराश हो जाएं, यहां तक कि अंदर से बिल्कुल टूट जाएं। हमें लग सकता है कि हमारी मुश्किलें कभी दूर नहीं होंगी। ऐसे वक्त में हमें अपने पिता यहोवा पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और अपने मसीही भाई बहनों के करीब रहना चाहिए। हो सकता है यहोवा हमारी मुश्किल दूर ना करे। उसने नवोमी के पति और बेटों को जिंदा करके उसका दुख दूर नहीं किया, मगर जिस तरह उसने नवोमी की मदद की थी, उसी तरह मुश्किलें सहने में वो हमारी भी मदद करेगा। वो हमारे मसीह भाई बहनों को उभार सकता है कि वो मुसीबत की घड़ी में हमारा साथ दें, हमारी मदद करें। पैराग्राफ 8 से 13 से संबंधित तस्वीर के बारे में, नवोमी, रूत और ओरपा बहुत निराश और दुखी थी क्योंकि उन्होंने अपने अपने पति को खो दिया था। बाद में जब ओबेद पैदा हुआ तो रूत और नवोमी बोवस के साथ मिलकर बहुत खुश हुए। चित्र शीर्षक, यहोवा ने नवोमी और रूत को दिलासा दिया और उनका साथ नहीं छोड़ा। क्या वो आपके लिए ऐसा नहीं करेगा? एक लेवी देर होने से पहले संभल गया। पैराग्राफ 14। सवाल, एक लेवी किस वजह से बहुत निराश हो गया था? अब आइए भजन 73 के रचयिता की बात करें। वो एक लेवी था और उस जगह सेवा करता था जहां यहोवा की उपासना की जाती थी। एक अनोखी आशीष थी, फिर भी वो एक वक्त पर बहुत निराश हो गया। वो दुष्ट और मगरूर लोगों को देखकर जलने लगा। ऐसा नहीं कि वो भी उनकी तरह बुरे काम करना चाहता था, पर उसे ये देखकर जलन होने लगी कि इतने बुरे काम करने पर भी वो कैसे फल फूल रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं है, कोई दुख, कोई चिंता नहीं है। उन्हें देखकर भजन का वो रचयिता इतना निराश हो गया कि उसने कहा, मैंने बेकार ही अपना मन शुद्ध बनाए रखा। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने हाथ धोए। भजन 73 का 2 से 9 और 11 से 14। अगर वो इसी तरह निराश रहता तो यहोवा की उपासना करना छोड़ देता। पैराग्राफ 15। सवाल, भजन 73 के 16 से 19 और 22 से 25 के मुताबिक वो लेवी कैसे संभल पाया? भजन 73 के 16 से 19 में लिखा है, जब मैंने इन हालत को समझने की कोशिश की तो मैं परेशान हो उठा। मेरी ये उलझन तब दूर हुई जब मैं परमेश्वर के शानदार भवन में गया और मैंने उन दुष्टों के अंजाम के बारे में सोचा। बेशक तूने फिसलने वाली जमीन पर खड़ा करता है, तूने गिरा देता है ताकि वो बर्बाद हो जाएं। वो कैसे अचानक नाश हो जाते हैं, अचानक ही उनका बुरी तरह अंत हो जाता है। और आयत 22 से 25 में लिखा है, मैं अपनी बुद्धि और समझ खो बैठा था, तेरे सामने निर्बुद्धि जानवर जैसा हो गया था, मगर अब मैं हरदम तेरे साथ रहता हूं। तूने मेरा दाया हाथ थाम लिया है, तू मुझे सलाह देकर राह दिखाता है, बाद में तू मुझे सम्मान दिलाएगा। तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा और कौन है? तू मेरे साथ है तो मुझे धरती पर और किसी की जरूरत नहीं। इन आयतों के मुताबिक जब वो लेवी परमेश्वर के शानदार भवन में गया तो वो संभल पाया। वहां जब वो यहोवा की उपासना करने वाले दूसरे लोगों से मिला तो वो ठंडे दिमाग से सोच पाया और उसके मन को चैन मिला, और उसने प्रार्थना करके यहोवा को अपने मन की बात बताई। तब उसे एहसास होने लगा कि उसकी सोच कितनी गलत थी, और अगर वो ये सोच नहीं बदलेगा तो यहोवा से दूर जा सकता है। वो ये भी समझ पाया कि दुष्ट लोग भले ही फलते फूलते नजर आते हैं, मगर असल में वो फिसलने वाली जमीन पर खड़े हैं और उनका बुरी तरह अंत होगा। जब उसने यहोवा की सोच अपनाई तो वो दुष्टों को देखकर जला नहीं, ना ही निराश रहा। उसे शांति मिली और वो फिर से खुश रहने लगा। उसने कहा, यहोवा मेरे साथ है तो मुझे धरती पर और किसी की जरूरत नहीं। पैराग्राफ 16। सवाल, उस लेवी से हम क्या सीखते हैं? हम क्या सीखते हैं? जो लोग बुरे काम करते हैं वो शायद फलते फूलते नजर आए, लेकिन हमें उनसे जलना नहीं चाहिए। उनकी खुशी बस चंद दिनों की है और उन्हें हमेशा की जिंदगी नहीं मिलने वाली। उनसे जलने से हम निराश होंगे और हम यहोवा से भी दूर जा सकते हैं। अगर कभी आपको बुरे लोगों की खुशहाली देखकर जलन होने लगे तो आप क्या कर सकते हैं? उस लेवी की तरह परमेश्वर की सलाह मानिए और उन लोगों की संगति करते रहिए जो यहोवा की मर्जी पूरी करते हैं। अगर आप जिंदगी में सबसे ज्यादा यहोवा से प्यार करेंगे तो आप सही मायनों में खुश रहेंगे। और आप उस राह पर बने रहेंगे जिस पर चलकर आपको असली जिंदगी मिलेगी। पैराग्राफ 14 से 16 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक, भजन 73 का रचयिता ऐसे लोगों को फलता फूलता देखकर जलने लगा जो यहोवा की सेवा नहीं करते थे। हमसे भी ये गलती हो सकती है। पत्रस अपनी कमजोरियों की वजह से निराश हो गया। पैराग्राफ 17। सवाल, पत्रस अपनी किन गलतियों की वजह से निराश हो गया? प्रेषित पत्रस बड़ा ही जोशीला इंसान था, मगर वो उतावला भी था। वो कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता था या कुछ भी कर बैठता था और बाद में पछताता था। जैसे एक बार जब यीशु ने अपने प्रेषितों को बताया कि उसे बहुत दुख झेलना पड़ेगा और उसे मार डाला जाएगा, तो पत्रस उसे डांटने लगा और कहने लगा, तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। मत्ती 16:21-23। तब यीशु ने उसकी सोच सुधारी। एक बार जब यीशु को गिरफ्तार करने के लिए भीड़ आई, तो पत्रस ने उतावला होकर महायाजक के दास का कान काट दिया। उस वक्त भी यीशु ने पत्रस को समझाया कि उसने जो किया वो गलत है। एक बार पत्रस ने शेखी मारते हुए कहा कि भले ही दूसरे प्रेषित यीशु को छोड़कर भाग जाए, मगर वो कभी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन उसी रात उसने डर के मारे 3 बार अपने मालिक यीशु को जानने से इनकार कर दिया। तब उसे एहसास हुआ कि वो उतना मजबूत नहीं है जितना उसने सोचा था। वो बुरी तरह निराश हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। मत्ती 26:69-75। उसने शायद सोचा होगा कि यीशु उसे कभी माफ नहीं करेगा। पैराग्राफ 18। सवाल, यीशु ने पत्रस की मदद कैसे की ताकि वो संभल पाए? हालांकि पत्रस अपनी गलती की वजह से निराश हो गया था, मगर उसने हार नहीं मानी। बाइबल बताती है कि वो बाद में बाकी प्रेषितों के साथ यहोवा की सेवा करता रहा। पत्रस कैसे संभल पाया? पत्रस के गलती करने से पहले ही यीशु ने उसके लिए दिल से प्रार्थना की थी कि वो अपना विश्वास ना खो दे, और उसने पत्रस से कहा था कि जब वो पश्चाताप करके लौट आएगा तो वो बाकी चेलों के पास जाए और उन्हें मजबूत करें। यहोवा ने यीशु की प्रार्थना सुनी। बाद में जब यीशु जिंदा हुआ तो वो पत्रस के सामने अलग से प्रकट हुआ। उस वक्त उसने जरूर पत्रस की हिम्मत बंधाई होगी। और याद कीजिए कि जब प्रेषितों को सारी रात मेहनत करने पर भी मछलियां नहीं मिली और यीशु उनके सामने प्रकट हुआ, तो उस वक्त पे क्या हुआ? उसने पत्रस को यह साबित करने का एक मौका दिया कि वो यीशु से प्यार करता है। यीशु ने अपने प्यारे दोस्त पत्रस को माफ कर दिया था और उसे और भी जिम्मेदारियां सौंपी। पैराग्राफ 19। सवाल, जब हम कोई गलती करते हैं तो भजन 103:13-14 के मुताबिक यहोवा क्या करता है? हम क्या सीखते हैं? यीशु ने पत्रस के साथ जो व्यवहार किया उससे पता चलता है कि वो अपने पिता यहोवा की तरह बहुत दयालु है। इसलिए जब हम गलतियां करते हैं तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यहोवा हमें कभी माफ नहीं करेगा। शैतान चाहता कि हम ऐसा सोचें, लेकिन सच तो यह है कि यहोवा हमसे प्यार करता है। वो इस बात को समझता है कि हम में कमजोरियां हैं, इसलिए जब हमसे गलतियां हो जाती है तो हमें माफ कर देता है। जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है तो हमें भी यहोवा की तरह उसे माफ कर देना चाहिए। भजन 103:13-14 में लिखा है, जैसे एक पिता अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे यहोवा ने उन पर दया दिखाई है जो उसका डर मानते हैं, क्योंकि वो हमारी रचना अच्छी तरह जानता है। वो याद रखता है कि हम मिट्टी ही हैं। पैराग्राफ 17-19 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक, निराश होने पर भी पत्रस ने यहोवा की सेवा करना नहीं छोड़ा। उसके उदाहरण पर ध्यान देने से हम निराश नहीं होंगे और दूसरों की हिम्मत बंधाएंगे। पैराग्राफ 20। सवाल, अगले लेख में हम क्या जानेंगे? यूसुफ, नवोमी और रूत, लेवी और पत्रस के उदाहरणों से हमने सीखा कि यहोवा टूटे मन वालों के करीब रहता है। भजन 34:18। यह सच है कि वो हम पर कभी कभी मुश्किलें आने देता है और उस वक्त शायद हम बहुत निराश हो जाएं, मगर ऐसे वक्त में भी यहोवा हमें संभालता है। हम उन मुश्किलों को सह पाते हैं और हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। अगले लेख में हम इस बारे में और जानेंगे कि यहोवा कैसे अपने उन सेवकों को संभालता है जो अपनी कमजोरियों या मुश्किलों की वजह से निराश हो जाते हैं। आपका जवाब क्या होगा? यहोवा ने यूसुफ, नवोमी और रूत की कैसे मदद की, और वो आपकी कैसी मदद कर सकता है? यहोवा की मदद से एक लेवी कैसे संभल पाया, और यहोवा आपकी कैसे मदद कर सकता है? यहोवा ने पत्रस को कैसे मजबूत किया, और वो आपको कैसे मजबूत कर सकता है? गीत 7। यहोवा बल हमारा। लेख समाप्त।